हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगली सुबह विहा की आंखें चेहरे पर धूप पड़ने के कारण खुलीं, क्योंकि उसका चेहरा बालकनी की तरफ था जिसका पर्दा हटा हुआ था। विहा ने कम बताते हुए अपनी आंखें खोलीं और अचानक ही उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जंजीरों में जकड़ रखा हो। वो खुद से हिल भी नहीं पा रही थी। कुछ पल लगे थे उसे ये समझने में कि ये जंजीरें कुछ और नहीं बल्कि उसके पति के मजबूत हाथ हैं। वेदांत का चेहरा उसकी खुली पीठ पर टिका हुआ था और उसका पैर विहा के पैरों को जकड़े हुए था। उसका हाथ विहा की कमर पर कसा हुआ था। बस इसी वजह से विहा खुद को जंजीरों में महसूस कर रही थी। उसने मुश्किल से हल्का सा चेहरा घुमाकर वेदांत की तरफ देखने की कोशिश की, पर वो उसकी तरफ नहीं देख पा रही थी। थक कर उसने अपनी कमर पर मौजूद वेदांत के हाथ को दोनों हाथों से पकड़कर हटाने की कोशिश की, पर वो इतना ज्यादा भारी और कसा हुआ था कि विहा उसे थोड़ा सा भी हिला नहीं पाई। उसने परेशान होकर आखिर में चिल्लाकर कहा, वेदांत प्लीज छोड़िए मुझे, मुझे उठना है। विहा के चिल्लाने की आवाज सुनकर वेदांत के माथे पर बल पड़ चुके थे। उसने झुंझलाते हुए अपना चेहरा विहा की पीठ पर रब किया, जिसके साथ ही विहा के मुंह से एक सिसकी निकल गई, क्योंकि उसकी पीठ पर बहुत सारे लव बाइट थे जिन पर अब वेदांत की दाढ़ी लग रही थी और उसे थोड़ा दर्द हो रहा था। वेदांत ने धीरे से आंखें खोलकर देखा और उसे जब अपने चेहरे पर इतनी मुलायम चीज का एहसास हुआ तो वो उससे थोड़ा दूर हुआ और अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि ये विहा की पीठ है। वो जल्दी से उठकर बैठ गया, जिसके साथ ही विहा ने एक चैन की सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हरकत थी वेदांत, ये रात को परेशान करके चैन नहीं मिला, जो सुबह सुबह भी मुझे ऐसे पकड़कर सो रहे थे जैसे ही आपके छोड़ते ही तो मैं कहीं भाग जाऊंगी। वेदांत ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए विहा को बिल्कुल किसी छोटे बच्चों की तरह बेड से उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और अगले ही पल उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, टोमैटो तुम कैसी बातें कर रही हो, रात को मैंने तुम्हें परेशान किया है या तुमने मुझे। ये बोलने के साथ ही वेदांत के होठों पर शरारती स्माइल आ चुके थे। विहा ने आंखें बड़ी करके अपना चेहरा उसके सीने से निकालकर उसकी आंखों में देखा और अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और भी ज्यादा बड़ा करते हुए बोली, आपका दिमाग खराब हो गया, अब क्या बकवास कर रहे हैं आप, कभी भी कोई भी गलती अपने ऊपर क्यों नहीं लेना चाहते हैं, मेरी क्या गलती थी रात को, पता नहीं आपके अंदर कौन सा दानव घुसाया था जो आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे। वेदांत ने धीरे से उसके माथे को चूमते हुए कहा, अगर मेरे अंदर दानव घुसाया था इसका मतलब है कोई डायन तो तुम्हारे अंदर भी आई होगी। ये सुनकर विहा ने सवालिया नजरों से वेदांत को देखा। अगले ही पल वेदांत ने अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। विहा ने शर्माते हुए उसके एब्स की तरफ देखा, जिस पर उसके नाखूनों के स्क्रैच कुछ ज्यादा ही बने हुए थे। ऐसा लग रहा था वेदांत से ज्यादा वाइल्ड तो विहा थी। वहीं विहा का चेहरा अब शर्म से बिल्कुल वैसा हो गया था जैसा वेदांत उसे कहता है पके हुए टमाटर जैसा। वेदांत की बाहों से निकलते हुए खुद को चद्दर में लपेटकर बेड से उठते हुए बोली, आप निहायत ही बेशर्म इंसान हो, मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी, मेरे अंदर कोई डायन नहीं आई थी। वेदांत को उसकी इस बात पर हंसी आ गई, पर जल्द ही उसकी हंसी गायब हो गई जब विहा के बेड से नीचे कदम रखते ही उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई, क्योंकि कल रात विहा का फर्स्ट टाइम था जिसकी वजह से उसे बेहद दर्द हो रहा था। वेदांत उसकी कंडीशन समझते हुए तूफान की रफ्तार से बेड से नीचे उतरा और झट से विहा को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, टोमैटो आई एम रियली सॉरी, आगे से मैं खुद को कंट्रोल करूंगा और तुम्हारे साथ जेंटल रहने की कोशिश करूंगा, मैं भूल ही गया था कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तुम मुझे इतना नहीं झेल सकती हो। विहा उसकी सारी बातें सुन रही थी, पर अफसोस वह उसका जवाब नहीं दे पा रही थी। उसकी आंखों के कोने भीग चुके थे, वो जैसे तैसे होठों को भींचकर अपने दर्द को सहन करने की कोशिश कर रही थी जो सिर्फ नाकामयाब हो रही थी। वह चाहकर भी उस दर्द को रेसिस्ट नहीं कर पाई। उसने वेदांत की गर्दन में चेहरा छुपाकर बिल्कुल किसी छोटे बच्चों की तरह रोते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बहुत बुरे हो। इतना बोलकर वह और भी ज्यादा रोने लगी। वेदांत से उसका रोना सहन नहीं हो रहा था। उसने जल्दी से उसे बाथटब में ले आया और फिर बाथटब को गुनगुने पानी से भर दिया। उसके पास बैठते हुए उसका गाल सहलाकर बोला, बस बच्चा, थोड़ी देर और फिर तुम्हें आराम मिल जाएगा। तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लेकर आता हूँ, ठीक है? प्लीज रोना बंद करो, रियली सॉरी। विहा ने रोते हुए अपना सर वेदांत के कंधे पर रख लिया और अपनी आँखें बंद कर ली। गुनगुना पानी मिलने के बाद उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ अनाही बालकनी में बैठकर बार बार काशी का फोन ट्राई कर रही थी, पर उनका फोन सिर्फ रिंग हो रहा था। उधर से कोई फोन नहीं उठा रहा था, जिस वजह से अनाही काफी परेशान थी। रूहान हाथों में दो कप कॉफी लिए बालकनी के अंदर आया और फिर एक कप उसे देते हुए बोला, मैडम जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? हो सकता है सासूमा कहीं बाहर बिजी हों। ये सुनकर अनाही ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मुझे लगता है मैं ही ओवरथिंक कर रही हूँ। आप बताइए, आपकी बिलौटी कैसी है? रूहान ने गुस्से में कहा, वह मेरी शुगर बेबी है, आप उसे बिलौटी कैसे कह सकती हैं? ये सुनकर अनाही को हंसी आ गई। उसने खुले आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अब वह एक बिलौटी है तो मैं उसे बिलौटी क्यों ना कहूँ? क्या अगर आपको कोई इंसान बोलता है तो आपको गुस्सा आता है? नहीं ना, अब जो वह है वह रहेगी। अब मैंने बोल दिया तो आपको क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? रूहान ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, वह मेरी शुगर बेबी है, आप उसे शुगर बुला सकती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। अनाही ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं आप उससे? रूहान ने आंखें बड़ी करके अनाही को देखा। उसका चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ चुका था और उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। अनाही ने कुछ पल की खामोशी के बाद कहा, कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं तो इसमें बुरी बात नहीं है, क्योंकि वह आपकी जिंदगी में पहले आई थी और मैं बाद में, तो ऐसा हो सकता है। रूहान ने नजरें झुकाते हुए कहा, नहीं मैडम जी, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको किसी से कंपेयर कैसे कर सकता हूँ? और जो प्यार मैं शुगर से करता हूँ वह अलग है, और जो आपसे, वह बोलते बोलते रुक गया जब अनाही की नजरें उस पर अटकी थीं। अनाही ने उसे चुप होता देखकर एक आईब्रो उठाकर कहा, क्या हुआ, बोलिए आगे, आप मुझसे प्यार करते हैं? रूहान शांत हो गया और जल्दी जल्दी कॉफी पीते हुए बोला, मुझे जल्दी कॉलेज जाना है। ये बोलकर वो वहाँ से खड़ा हुआ। अनाही ने बड़ी शिद्दत से उसे देखा। अनाही ने अपने मन ही मन कहा, मुझे इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अपने बच्चों को पालने में, क्योंकि ये तो मैं ऑलरेडी सीख रही हूँ कि एक बच्चे को कैसे पालते हैं। रूहान वहाँ से जा चुका था। वहीं उसके जाते ही अनाही को एहसास हुआ कि वह क्या सोच रही थी। उसने एक हाथ से अपना सर पकड़ते हुए कहा, उनके आसपास रहकर मुझे हो क्या जाता है, कितने अटपटे ख्यालात मेरे दिमाग में आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे पहले वाली अनाही ही बनना है जो कम बोलती थी, कम सोचती थी और कम एक्सप्लेन करती थी, हाँ यही ठीक रहेगा।
वहीं बाहर गार्डन एरिया में अनंत और राव्या दोनों स्टेज और स्पीकर इन सबको वापस शॉप वालों के हवाले कर रहे थे। राव्या हाथों में एक डायरी लिए खड़ी थी और अनंत उसे सब कुछ समझा रहा था कि क्या क्या चीजें जा चुकी हैं और क्या क्या बाकी हैं, हमने किस चीज का रेंट दे दिया है और किसका देना है। राव्या भी फुल फोकस के साथ काम कर रही थी।